बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो शाम में जो कुछ हुआ, ये आखिरी तकरीबन दो हफ्ते के दौरान, इससे आज पूरी दुनिया जो है वो जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ, कि ये जंग जो 2011 में शुरू हुई थी इतना लंबा अरसा रही, लेकिन ये अचानक आखिर में आकर 7-8 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा निज़ाम जो था, जिसकी उम्र 54-55 साल थी, वो कैसे ज़मीन बोस हो गया, कैसे ये तब्दीली आई, ये एक सवाल है जो तकरीबन हर बंदा जानना चाहता है। इसके अवामिल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, और कैसे ये सब कुछ हुआ। इसको समझने के लिए सूर्या के निज़ाम को भी समझने की ज़रूरत है, और मद्दे मुकाबिल जो कुव्वतें हैं उनको जानने की भी ज़रूरत है कि जिनके दरमियान ये जंग थी। इस जिबह को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तरफ सूर्या था और सूर्या के इत्तेहादी थे कि जो हालात ख़राब होने के बाद इस मुल्क के अंदर वारद हुए, जब तक ये हालात ख़राब नहीं हुए, ना वहाँ पर रशियन फोर्सेज थी, ना ईरानी फोर्सेस थी, ना कोई हिजबुल्ला वहाँ पे मौजूद थी। ये सारे हालात ख़राब होने के बाद सूर्या के निज़ाम को बचाने के लिए आए थे। तब कोई 2 साल के बाद आया, कोई 3 साल के बाद आया, वगरना इससे पहले ये लोग वहाँ पे शाम के अंदर मौजूद नहीं थे। और जब ये जंग शुरू की गई 2011 के अंदर, तो जो कुव्वतें इस जंग को छेड़ने के अंदर किरदार अदा कर रही थी, वो उसका मरकज़ और उनकी मुदीरियत और प्लानिंग का मरकज़ अमेरिका है। अमेरिका एक बुनियादी मरकज़ था, उसके साथ इसराइल था, सहयूनी थे, फिर उनके कुछ मगरबी इत्तेहादी उनके साथ दे रहे थे, जिनमें बरतानिया, फ्रांस सर फहरिस्त हैं, और उसके बाद खित्ते के अंदर कुछ उनके इत्तेहादी थे जो इस प्लान के अंदर, यानी शाम के अंदर कायम रजीम को या निज़ाम को गिराने के लिए उनका साथ दे रहे थे। उसमें एक तरफ तुर्की है मुसलमान ममालिक के अंदर, दूसरी तरफ उर्दन है, ये दोनों सीरिया के बॉर्डर के ऊपर हैं। इन दोनों ममालिक का बुनियादी किरदार था, और इनसे भी अहम किरदार खलीजी ममालिक का था, जिनमें बिलखसूस जो है कतर, सऊदी अरब और अमारात, ये तीन ममालिक सर फहरिस्त खलीजी ममालिक के अंदर। बाकी इनकी हमायत के अंदर दीगर अरब हुक्मरान भी थे। तो ये तकरीबन सारे जो अमरीकी ब्लॉक बनता है, उसके अंदर मगरबी हों या खलीज के अंदर या इस खित्ते के अंदर अरब ममालिक के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर जो उनके इत्तेहादी मौजूद थे, इन सब ने मिलकर इस साजिश के अंदर हिस्सा लिया कि यहाँ पे हमने ये सिस्टम, ये निज़ाम तब्दील करना है। कसूर क्या था? क्योंकि जितने भी बाकी यहाँ पे खित्ते के ममालिक थे, उन सब को इसराइल राम कर चुका था, उन सब को तकरीबन किसी न किसी डील के तहत, वो टेबल के ऊपर होने वाली डील थी या टेबल के नीचे होने वाली डील थी, वो किसी न किसी डील के तहत उनको वो मैनेज कर चुका था। और एक तसलसल के साथ ये एक के बाद दूसरे गिर रहे थे, तल्लुकात बना रहे थे, इसराइल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये जब इस गैर कानूनी और गैर फितरी इस रियासत का क़याम फ़लस्तीन की सरज़मीन पे कायम किया गया, और इसके अंदर बैल अक़वामी क़ुव्वतें शामिल थी, उस वक्त भी बरतानिया और अमेरिका का बुनियादी साथ था, जब 48 के अंदर इस कियान सहयूनी या इस सहयूनी स्टेट का, इसराइल का ऐलान किया गया, तो उसी वक्त से इस खत्ते के अंदर जंग शुरू हुई। इब्तदा में सारे अरब ममालिक जो फ़लस्तियों के साथ थे, कुद्स की आज़ादी की बात कर रहे थे, फिर एक एक करके वो पीछे हटना शुरू हो गए। 67 की जंग तक तकरीबन अरब 100% मुत्तफिक थे, लेकिन 67 की जंग के बाद फकत चंद एक ममालिक रह गए, बाकी ममालिक अपनी मसलहत के तहत अमरीकी नफूज की वजह से, अमरीकी खौफ की वजह से वो पीछे हटते गए। 73 के अंदर आखिरी जंग जो बाकायदा जंग हुई, वो शाम के जेबे के ऊपर इसराइल के साथ थी। उसके बाद फिर जाकर तो कैंप डेविड मुआहदा होता है इसी 70 के अशरे के अखीर में जाकर, और उसके बाद ये तकरीबन इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये पूरा का पूरा जो महाज था यानी इसको सर्द कर दिया गया कि अब इस खित्ते के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है, क्योंकि मिस्र कि जिसका बॉर्डर भी मिलता है, इतना बड़ा अरब मुल्क है, उसने जब इसराइल को कबूल कर लिया है, सफारतखाना खोल लिया है, ताल्लुकात बना लिए हैं, और उसके बाद फिर उर्दन ने भी ताल्लुकात बना लिए, फिर इतना प्रेशर आया फ़लस्तीन लीडरशिप के ऊपर कि यासिर अरफात जैसे लोग खुद वो भी बराम हो गए। तो जब ये तमाम तर चीज़ें हो गई तो दुश्मन मुतमैन हो गया कि हमने अब यानी इस कज़िये को ख़त्म कर दिया और अपना वजूद जो है ताकत के ज़रिए हमने मनवा लिया। और वो जिस इसराइल के जिसकी इब्तदाई तौर पर कब्ज़ा 50% से भी कम था जो उनने पहला किया था कब्ज़ा, अब वो बढ़ता बढ़ता तकरीबन 80% से ज़्यादा चला गया। हालांकि उनकी आबादी 9% भी नहीं थी उस ज़माने के अंदर, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा ताकत के ज़रिए, बैरूनी मदद के ज़रिए तकरीबन पूरे फ़लस्तीन के ऊपर कर लिया, कुछ के ऊपर भी तकरीबन उनका गलबा हो गया। लेकिन ये अरब लीग और अरब जो मुस्लिम OIC के प्लेटफार्म थे, ये फ़कत नाम की हद तक फ़लस्तीन का नाम लेते थे, लेकिन कोई अमली सपोर्ट उसके बाद इनको नहीं मिलती थी। हालाँकि इनकी बुनियाद इसी वजह से रखी गई थी 69 के अंदर, ये मुस्लिम मालिक की जो तंजीम OIC बनी, ये हकीकत में इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलमानों को इकट्ठा करके ये तंजीम बनाई गई थी और इसराइल किससे आज़ादी के लिए बनाई गई थी, लेकिन आखिर में ये बिल्कुल ही बेअसर होकर रह गई। अरब लीग का भी यही हाल हुआ। तो इसकी अगर यानी देखें तो यानी दुश्मन ने तसलसल के साथ काम करके अपने तमाम तर मुखालिफिन को उन्होंने बिल्कुल ही यानी ख़त्म कर दिया। तो इसी अरसे के अंदर यहाँ पे ईरान के अंदर एक इनकलाब आता है, जो जुल्म के ख़िलाफ़ एक इनकलाब था, जो मुस्तदअफीन का इनकलाब था और जिसकी राहबरी इमाम खुमैनी कर रहे थे, और उससे फ़लस्तीनी आवाम को भी एक उम्मीद मिलती है कि अगर मुस्तदअफीन इकट्ठे हो जाएं तो वो बग़ैर किसी शर्क और गर्ब की कुव्वत के इनकलाब ला सकते हैं। दूसरी तरफ यह था कि इस इनकलाब की जो क़यादत थी हज़रत इमाम खुमैनी की शक्ल में, उसने पहले दिन से कज़िया फ़लस्तीन और मुस्तदअफीन जहान की नुसरत और मदद को अपना पहला फरीज़ा समझा। फ़लस्तीनी मुकावमत की लीडरशिप उठी, जिनमें शहीद फतेह शकाकी थे, उसके बाद शहीद अहमद यासीन थे, उसके बाद यके बाद दीगर कई शख्सियात जो हैं वो तसलसल के साथ वहाँ पर आती रहीं और वो इस्तेलहाम लेती रहीं इमाम खुमैनी के इस इनकलाब से, इमाम खुमैनी की नहजत से, इमाम खुमैनी की फ़िक्र से। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि दूसरी तरफ दुश्मन ने लबनान पे कब्ज़ा कर लिया था, तो लबनान के अंदर भी जो लोग थे वो मुत्तहिद हुए अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, उन्होंने भी इमाम के इस मकतब से दर्स हासिल किया, इमाम से हमायत और मुलाकात की। हज़रत इमाम ने हर मुस्तदअफ़ की मदद करने का ऐलान किया। तो ये नुसरत मुस्तदअफ़ी के उनवान के तहत कि जो इमाम का शआर था, फ़कत इमाम का नहीं उनके जद अमीरुल मोमिनीन की वो वसीयत थी जो उन्होंने अपने बेटों को की थी, यानी जो हमेशा जो है मज़लूम के मददगार रहना और ज़ालिम के मुखालिफ रहना, तो इसी कायदे के तहत इमाम खुमैनी ने मज़लूमों की हमायत के लिए अपने इनकलाब के हवाले से उनकी खुलकर हमायत करना शुरू कर दी। तो ये जो तजर्बा ईरान के अंदर हुआ था मुकावमत का, शहनशाहियत के ख़िलाफ़ और अमरीकी तसल्लुत के ख़िलाफ़, इसराइली तसल्लुत के ख़िलाफ़, क्योंकि यहाँ भी अमरीकी तसल्लुत था, इसराइली तसल्लुत था, तो क्योंकि ये पूरे खित्ते के ऊपर छाया हुआ था कि जब यहाँ पे अमरीका को शिकस्त हुई और इसराइल को शिकस्त हुई, तो दूसरी कौमों को भी उम्मीद हुई कि अगर ईरानी कौम ये काम कर सकती है, मुकावमत कर सकती है, आज़ादी हासिल कर सकती है, तो हम लबनानी भी ये काम कर सकते हैं, हम फ़लस्तीनी भी ये काम कर सकते हैं। तो फिर लबनानियों ने और फ़लस्तीनियों ने इस मुकावमत को वसअत दी और बेसरसमानी के आलम में वो उठ खड़े हुए। इब्तिदा में आप देखते हैं कि वो पत्थर लेकर गुलेल लेकर आए, उन्होंने अपना मुकावमत की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वसाइल और असबाब जंग के इकट्ठा करना शुरू किए, उनके पास एक महदूद किस्म का असलाह आना शुरू हो गया जिससे वो अपनी जान माल नामूस की हिफाजत करते थे, अपनी सरजमीन और अपनी इज्जत और करामत की हिफाजत के लिए वो जंग लड़ते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनके पास और अस्करी ताकत आ गई और जब उनने वो वसाइल अमकानियात अपनी कुव्वत के इनासर इकट्ठे करना शुरू कर दिए, तो यहाँ से मुकावमत का बुलाक मजबूत होना शुरू हुआ। तो इस मुकावमत की आबियारी के अंदर जहां बुनियादी किरदार इमाम खुमैनी और इनकलाब इस्लामी का था, या उनके बाद उनके बाद आने वाले वली अमर मुस्लिमीन रहबर मोज़ा इमाम खामनाई का किरदार था, वहां पे जो उस खित्ते के अंदर एक ऐसी हकूमत तनहा मौजूद थी जिसका नाम शाम थी, सीरियन अरब रिपब्लिक के, जिसके सरबराह हाफिज़ुल असद थे, उन्होंने भी इस मुकावमत की तकवीत के लिए और इसकी कमज़ोर जब मुकावमत थी इसको ताकतवर बनाने के अंदर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की, अखलाकी तौर पर भी, अस्करी तौर पर भी, हर लिहाज से जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने ये काम किया, क्योंकि बाकी तकरीबन अरब ममालिक जो थे वो तस्खीर हो चुके थे। एक शाम वो मुल्क था कि जो इसराइल के सामने नहीं झुका था, यानी वो दुरुस्त है कि डायरेक्ट जंग नहीं लड़ रहा था इसराइल के खिलाफ, इतनी ताकत शायद नहीं रखता था, लेकिन वो झुका नहीं था, उसके मवाकिफ और उसने हमेशा फलस्तीनी और लुबनानी मुकावमत की हर लिहाज से मदद की। अब जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, हाफिज़ुल असद का दौर ख़त्म हुआ, तो हाफिज़ुल असद के बाद बशारुल असद ने भी अपने बाप की रस्ते के ऊपर चलते हुए उसने भी इस मुकावमत की मुकम्मल हमायत जारी रखी। इब्तदाई तौर पर इसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि तुम, यानी नया हुक्मरान था, एज भी कोई ज़्यादा नहीं थी, अमरीका के इत्तेहादियों ने कोशिश की कि इसको रस्ते से मुनहरिफ किया जाए। तो सबसे पहले बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो है यानी प्रेशर डाला गया कि वो ईरान से और मुकावमत से दूरी अख्तियार करे। तो इसका कसूर ये था कि इसने मुकावमत से दूरी अख्तियार नहीं की। जब इराक़ के अंदर सद्दाम रजीम ख़त्म हुई तो अमेरिकन आकर इराक़ के ऊपर काबिज हो गए, तो उस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कोलन पावल था, वो यहाँ से जाता है दमिश्क के अंदर, बशार से मुलाकात करता है और कहता है कि देखिए, हम इराक में तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर आ चुके हैं, अब आपके पास फुर्सत है, या यानी मुकावमत से और ईरान से दूरी अख्तियार करो, हमारे करीब हो जाए, हम आपको इस पूरे खित्ते की, जिसे कहते हैं लीड, आपके हवाले करेंगे, तमाम आप ही सब कुछ इस खित्ते का फैसला करेंगे, और अगर नहीं तो फिर यही जो कुछ सद्दाम के साथ हुआ है, जो इराक के हुआ है, इसका इंतज़ार करें। उसने इस्तेकामत दिखाई, वो अमरीकी धमकियों से नहीं डरा और उसने मुकावमत की हमायत जारी रखी। तो यहीं से जंग शुरू हो गई। जंग ये आज की जंग नहीं है, बशारुल असद के खिलाफ जिस वक्त उसने मुकावमत को न छोड़ने का फैसला किया, तो वहीं से अमरीका के साथ, अमरीका के इत्तेहादियों के साथ उसके मसाइल शुरू हो गए। उसके खिलाफ पहली कार्रवाई जो की गई वो ये थी कि वहाँ पे लुबनान के अंदर रफ़ीकुल हरीरी का कत्ल करवाया गया। सारी दुनिया जानती है कि उसके अंदर इसराइल का हाथ था, इसराइल साजिश थी, और इसके ऊपर कई रिपोर्टें छप चुकी हैं, लेकिन इस पूरा का पूरा मलबा उस ज़माने के अंदर बशारुल असद पे डाला गया। लेकिन क्या किया गया कि लुबनान की फ़ौजें जो अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत के साथ लुबनान के अंदर मौजूद थीं, लुबनान के अंदर क़याम अमन के लिए मौजूद थीं, सबसे पहला प्रेशर डालकर लुबनान की फ़ौजों को वहाँ से निकाला गया। चाहते थे जलील करके निकाले वहाँ के फ़ौजों को, लुबनानी अवाम यानी रफ़ीक हरीरी के कत्ल के बाद एक रिएक्शन दिखाएंगे और शाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाएंगे, लेकिन शाम की लुबनान की अवाम ने बाहर कैफ उस वक्त शाम की यानी फ़ौजों का शुक्रिया अदा किया, बशारुल असद का शुक्रिया अदा किया, लेकिन क्योंकि बैन अक़वामी एक करारदाद थी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी, जिसकी वजह से शाम को मजबूरन लुबनान छोड़ना पड़ा। लेकिन लुबनान छोड़ने का मकसद ये था कि अब मुकावमत की पीठ खाली हो गई, अब लुबनानी मुकावमत के पीछे कोई नहीं रहा। तो ये सबसे पहले मुकावमत को सीरिया से जुदा करने के लिए या मुकावमत को कमज़ोर करने के लिए लुबनान के अंदर ये काम किया गया। फिर उसके फौरन बाद जो है 2006 की जंग मुसल्लत की गई। उस 2006 की 33 रोज़ा जंग के अंदर जो लुबनान के ऊपर मुसल्लत की गई अमेरिका और इसराइल और इन सब लोगों ने मिलकर, जिसका यानी जो खुद डायरेक्ट इसराइल ने तबाही फैलाई, सारी दुनिया उन हालात को जानती है, वहाँ पे लुबनान ने इस्तिकामत दिखाई, मुकावमत ने इस्तिकामत दिखाई, और जब उन्होंने बाद में तहरील तजिया किया कि आखिर ये इस्तिकामत क्यों हुई, तो उनको यकीन हो गया कि अगर जब तक ये शाम का मुल्क यहाँ पर इस मुकावमत के करीब है है, तो ये इनकी हर लिहाज से अखलाकी सपोर्ट भी इनको मिलती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलती है, असलाह वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है, तो एक इनकी पुश्त पे एक बड़ी ताकत मौजूद है, जिसकी वजह से शाम के खिलाफ वो मजीद मुखालिफ हो गए इस निज़ाम के, बशार अल असद के। उसके बाद फिर कोशिश की इनके दरमियान जो है इख्तलाफात किए जाएँ, तो मुकावमत के एक अहम लीडर को कि जो यानी 2006 की जंग का सबसे बड़ा कमांडर था इमाद मोगनिया, उसको दमिश्क में कत्ल किया जाता है। कहीं और भी कत्ल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कत्ल करने का मकसद यानी मुकावमत के दरमियान और शाम के दरमियान जो है हालात को ख़राब करना था। लेकिन ये मरहला भी गुजर गया, तल्लुकात उनके और मजबूत होते गए लुबनान की मुकावमत के और शाम की मुकावमत के, खुद शाम के मुल्क के। तो ये सिलसिलावार एक जंग थी जो जारी थी। फिर उसके बाद एक पूरा बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बना, जिसका मैंने जिक्र किया, और उसमें पूरी दुनिया जहान से तकरीबन कम अज़ कम तादाद जो कही जाती है 40,000 वगरना लाखों के अंदर दहशतगर्द कोई 80 से 100 ममालिक से मुख्तलिफ जगह से इकट्ठे किए गए और उनको शाम के अंदर वारद किया गया 2011। तो एक पूरी दुनिया की जंग थी, यानी शाम के ख़िलाफ़ फ़कत ये नहीं था कि इसराइल लड़ रहा था, बल्कि वहाँ पर पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यानी फ़लस्तीनी लोग अपनी जंग छोड़ कर वो हाँ शाम के अंदर बशार अल असद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक बड़ी तादाद आ गई। उर्दन के लोग थे, सऊदी अरब के लोग थे, यानी पूरे खित्ते के तमाम इस्लामी ममालिक के, लीबिया के, ट्यूनिस के, मिस्र के, हर जगह के, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, हर इलाके से दहशतगर्द उठते हैं और वो फ़कत बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए यानी वो जिहाद का नारा बुलंद करते हैं। गोया दुनिया के अंदर जिहाद के लिए फ़कत एक ही जगह है, वो शाम है। और कसूर क्या था शाम का, कि वो इसराइल को कबूल नहीं कर रहा था। ये जंग बड़ी ख़तरनाक जंग थी, इसके अंदर मीडिया ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तकरीबन दुनिया की सब ज़बानों के अंदर 700-800 के करीब चैनल शबाना रोज़ जो है वो नशरियात नशर कर रहे थे और लोगों की जहन साजी कर रहे थे और तमाम तर हकायक को उलट पुलट करके दुनिया को बता रहे थे। और ये एक बड़ी ख़तरनाक जंग थी। तो ये जंग जब शुरू हुई तो यानी एक ऐसा वक्त था कि क्योंकि उसके बॉर्डर के चारों तरफ से शुरू की गई, इराक़ से भी शुरू गई, इराक़ से दहशतगर्द दाखिल हुए, उधर से फ़लस्तीन की तरफ से लोग आए, उर्दन की तरफ से लोग आए, हर तरफ से लोग आए, और अभी तक लोगों ने हिजरत नहीं की थी। तो लुबनानी सीरियन के लोगों के लिए तुर्की के अंदर बाकायदा कैंप बन चुके थे, उर्दन के अंदर भी कैंप बन चुके थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके बॉर्डर के ऊपर कैंप बनाकर यहाँ पर सीरियन फोर्सेस तैयार की जाए। यहाँ से लोगों को हिजरत पर मजबूर किया गया और उन कैंप्स के अंदर जाकर रखा गया, फिर वहीं से उनको ट्रेनिंग के वो मराकज़ बना दिए गए। और ये एक जंग बहुत ख़तरनाक जंग थी, ये बहुत बड़ा हमला था। लेकिन जब ये हमला शुरू हुआ तो एक दो साल के बाद जो शाम के इत्तेहादी थे, क्योंकि ये जंग मुकावमत के ख़िलाफ़ जंग थी, तो लुबनान की मुकावमत ने समझा कि ये जंग फ़कत और फ़कत ये यानी शाम के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि हमारे ख़िलाफ़ ये जंग है, वो अपनी जंग समझकर वो भी मैदान के अंदर वारिद हुए। और फिर ईरान ने भी समझा कि ये फ़कत जंग जो है ये शाम के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, ये पूरे जबह मुकावमत के ख़िलाफ़ जंग है और शाम हमारा इत्तेहादी मुल्क है, एक लंबे अरसे से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो शाम के अंदर ईरान भी पहुंच गया। इसी अंदाज से रशिया ने देखा कि अमेरिका पूरे खित्ते के ऊपर छा रहा है और उसके मफादात को भी ख़तरा है, और शाम जो मुल्क वो था कि जो मशरकी ब्लॉक का हिस्सा था, रशियन ब्लॉक का हिस्सा था, और उनके बहुत पुराने कदीमी आपस में ताल्लुक़ थे, अस्करी भी और बाकी भी सकाफती भी। तो रशिया, ईरान, मुकावमत, ये सारे लोग इकट्ठे होकर शाम के दिफा के लिए मैदान में आ गए। जब ये आ गए तो तकरीबन 2015 के बाद नक्शा बदलना शुरू हो गया, यानी 11 से लेकर 14-15 तक नक्शा यानी दहशतगर्दों की पेशकदमी का था, लेकिन 14-15 से लेकर 17 तक तकरीबन ये कज़िया शाम के हक़ में चला गया और ये दुनिया जहान के आए हुए दहशतगर्द पसपा होकर वापस चले गए और शाम ने तकरीबन 85% 90% इलाके जो थे वो आज़ाद करवा लिए। एक फकत मुकम्मल उनका एक सूबा जिसे हम इदलिब कहते हैं वो दहशतगर्दों के पार रहा, वो भी तुर्की के, क्योंकि बॉर्डर के बहुत करीब था और तुर्की के वजूद की वजह से वो आज़ाद नहीं हुआ, या फिर वो इलाके के जो इराक़ और तुर्की के बॉर्डर के साथ देरजूर हसका और रक्का के इलाके थे, तो वहाँ पर भी यानी नाअमनी रही, कुछ इलाके हकूमत के पास रहे और कुछ वहाँ के मकामी मुख्तलिफ लोगों के पास रहे, कुछ फिर इन दाइशी के पास रहे, लेकिन सबको हमायत और सपोर्ट जो थी वो कुर्द लोग हों या वो दाइशी हों उनको अमेरिकन की थी। और इस अरसे के अंदर अमेरिका ने शाम के जो गैस और पेट्रोल के जहां पे मराकज थे और उनकी पैदावार के मराकज थे वो उन इलाकों के अंदर अपने अड्डे कायम कर लिए थे और एक बहुत बड़ा अपना फौजी अड्डा वो दमिश्क बगदाद रोड के ऊपर जो इनका बॉर्डर है, टनफ का जो इलाका है शाम की तरफ से और वलीद का जो बॉर्डर है इराक की तरफ से, यहाँ पे अमेरिकन ने एक बहुत बड़ा अपना अड्डा बना लिया जिसने तकरीबन 50 किलोमीटर मुरब्बा जगह घेर रखी थी और ये पनागाह थी दाइशियों के लिए और सीरियन फ्री आर्मी के लिए और कुर्द जो थे वहाँ पे इंतहा पसंद उनके लिए आज़ादी खा जिसे हम वो कह रहे थे, तो कुर्द भी वहाँ पर पना लेते थे, दाइश भी वहाँ पे पना लेती थी और सीरियन फ्री आर्मी के लोग भी वहीं पे जाकर पना लेते थे, वो उनकी तरबियत का भी मरकज़ था, ट्रेनिंग का भी मरकज़ था और उनकी पनागाह भी था, और ख़ुद अमेरिकन भी अपनी फोर्सेस और अपने जो फ़िज़ाई फोर्सेस सारों का अड्डा और पूरी जो फ़िज़ाइया का एक बहुत बड़ा मरकज़ उनने वहाँ पे वो बना लिया था, इसके अलावा और भी छोटे छोटे अड्डे वहाँ पे कायम कर लिए थे। अब इसके बाद ये जंग जो है एक मरतबा ठंडी होती है, एक मरतबा ठंडी होती है। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ थी, वो तकरीबन अभी इस यानी चंद दिनों के में वो मुनकशिफ हुई है, सबसे उससे पहले यानी इतना लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हुआ। अमेरिका ने या इसराइल ने जब देखा कि हम इस पहली जंग का जो पहला हमला है हम वो पसपा हो चुके हैं, तो उन्होंने उसके बाद अपने इत्तेहादियों के रोल जो हैं तकसीम किए, मरकज़ मुदीरियत उसकी पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिका के पास था या वो इनके पास था इसराइल के पास था, और अमेरिका का अपना एक किरदार था जो उसने अदा करना था शाम के ख़िलाफ़, इसराइल का अपना किरदार था और बाकी जो इत्तेहादी थे उनको दो किरदार दिए, एक रोल जो दिया वो इमारात और सऊदी अरब को दिया कि आप शाम को इत्मीनान दिलाएं, इसके साथ ताल्लुकात कायम करें और इसको अपनी तरफ खींचें और उसको लालच दें, उसको अपने करीब लाएं और उसको इत्मीनान दें कि अगर आप ईरान से दूरी इख्तियार करते हैं तो हम आपके मुल्क को और आपके इक्तदार को और निज़ाम को हम आपके साथ मुकम्मल तआवुन करेंगे और आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए आपके साथ तआवुन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या किया गया, अमेरिकन ने सख्त तरीन पाबंदियां जो हैं वो शाम के ऊपर लगा दी, यानी वो सजाएं जो कैसर कानून कैसर के तहत अमेरिकन ने लगाई शाम के खिलाफ वो बहुत सख्त सजाएं थी जिसकी वजह से शाम इक्तिसादी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर और तबाह होता गया, यानी शाम की करेंसी की जो हालात ख़राब होने से पहले $1.50 का था वो आखिर में 15,000 लीरे तक पहुंच गया, और वहाँ पे एक बंदा जिसकी तनख्वाह $400-500 हुआ करती थी उसकी तनख्वाह $20-25 तक रह गई, यानी वहाँ पे जो लोग हालांकि हुकूमत ने कई गुना कई बार तनख्वाहें बढ़ाई तब भी यही कुछ तनख्वाह बनती थी, तो एक तसलसल के साथ शाम के अंदर उन्होंने इक्तसादी तौर पर इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर इक्तसादी पाबंदियाँ जो लगाई गई बैन अवी और अमेरिकन उससे शाम को इक्तसादी तौर पर तबाह कर दिया गया। फिर जितने भी उनके इकतसादी यूनिट थे उनको या वहाँ से चोरी कर लिया गया या उर्दोगान के ज़रिए वहाँ से जितने बड़े बड़े प्लान थे बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो उठाकर लेकर आ गए दहशतगर्दों के ज़रिए और बाकी जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी उनको तबाह कर दिया गया। वो मुल्क जो हमसाया ममालिक को बिजली दिया करता था उस मुल्क के अंदर पावर ख़त्म हो गई, उनको बिजली अपनी आवाम को उनके पास कभी आधा घंटा 24 घंटे में बिजली आती थी और कभी एक घंटा आती थी, वगरना उनके मुल्क के अंदर तकरीबन बिजली की पैदावार नहीं हो रही थी, और क्योंकि जितने भी उसके प्लांट थे, उसके सिस्टम था, उनका स्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा जो है उन्होंने वो तबाह कर दिया। यानी मुल्क को हर लिहाज से, खिदमात के लिहाज से मफलूज करने के लिए, और इसका डायरेक्ट प्रेशर किस पे जा रहा था, शाम की अवाम के ऊपर जा रहा था, और हुकूमत भी महसूस कर रही थी कि हमारे ऊपर ये तमाम तर जो सख्तियाँ और पाबंदी हो रही हैं। तो एक तरफ तो अमेरिकन ये रोल अदा कर रहे थे, दूसरी तरफ इसराइल क्या कर रहा था, आए दिन फिजाई हमले करके शाम की कुव्वत को कमज़ोर करने के ऊपर काम कर रहा था, और शाम के इख्तदार का जो रोब था होता है उसको ख़त्म करने के लिए आए दिन शाम के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, उनके मराकज के ऊपर, अस्करी मराकज के ऊपर इसराइली मिज़ाइल गिरते थे, और अहम शख्सियात टारगेट किलिंग इसराइल किया करता था। तो ये सिलसिला भी चलता रहा, और सऊदी अरब और कतर का तो मैं अमारात का तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात बनाए, उन्होंने अपने सफारत खाने खोल दिए, और शाम को कहा कि हम आपके तामीर नौ के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, जो सहूलियात चाहिए आपको, आप ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, यहाँ के पब्लिक के मसाइल हल हो सकते हैं, आपके मसाइल हल हो सकते हैं, और आपके मुखालिफ लोगों को हम खामोश करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी तरफ आ जाएँ। फिर उनने फ़कत ये नहीं कि उनने फ़कत बशार अल असद से ये ताल्लुकात कायम किए, बल्कि उन्होंने खुद अरकान इख्तदार के अंदर जो अहम फैसला साज बड़े बड़े मसूलीन थे, वो उनकी हकूमत के वज़रा हों, वो उनके आर्मी के बड़े बड़े अफसरान हों, या उनके ताजर हों, उनने मुख्तलिफ तबकात के साथ इन ममालिक ने ताल्लुकात कायम किए, और सबको आहिस्ता आहिस्ता कायल किया कि आपको ईरान से क्या लेना देना, ईरान की वजह से आपके लिए ये मसाइल बन रहे हैं, वगरना आपके साथ तो कोई मसला नहीं है, ये आपके साथ सारी मुश्किल जो हैं वो हिज़्बुल्लाह और हमास की वजह से बन रही हैं, तो जब सारी दुनिया और खामोश है तो आप अपने मुल्क को क्यों तबाह करवाते हैं। तो ये एक बाकायदा इनके ऊपर काम होता रहा। और एक और रोल कि जो तुर्की का था या अख़वान मुस्लिमीन का था, वो रोल बहुत ख़तरनाक था। वो ये था कि ये जो कैंप बने हुए थे तुर्की के अंदर, और शाम के लोग यहाँ आ चुके थे, इनको अस्करी ट्रेनिंग देना, इनको तैयार करना, और ये इदलिब के इलाके के अंदर वहाँ पे एक हकूमत बना रखी थी। अब इस हकूमत के ज़ेरे साया उन्होंने एक बड़ी तरबियत गाहें बना ली इन लोगों के लिए, जो साबका जिनका जबहत नुसरा का था, दाइश का था, ये तमाम तर जो मुतशद्दिद तकफीरी गिरोह थे इनका था, और फिर इनके दरमियान और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात शुरू हो गए जब वहाँ पर जंग शुरू हुई, और इनमें से एक बड़ी तादाद के लोग यूक्रेन जाकर उनने तजर्बा हासिल किया, वहाँ पे जंग लड़ी, फिर वापस आए, और फिर यूक्रेन के साथ इनके अस्करी ताल्लुकात डायरेक्ट कायम हो गए, और जहाँ से इनको ड्रोन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी सहूलियात और असला और तमाम तर चीज़ें इनको नाटो के हवाले से इनको मुयसर आईं। तो एक बहुत बड़ी ताकत, अस्करी कुव्वत इनको बना दिया गया वहाँ पर तुर्की की तरफ। तो ये काम जारी था। अब बाद दफ़ा लोग ये सवाल करते हैं कि आया ईरान को इल्म नहीं था, शाम को इल्म नहीं था? नहीं, ईरान को इल्म था। खुद ईरान के मसूलीन बार बार कह चुके हैं कि हम बशार अल असद को या उसके हुकूमत हुक्मरानों को मुतवज्जे कर रहे थे कि ये मसाइल बन चुके हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे तैयारी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो लोग उनके इख्तदार के अंदर नीचे से मौजूद थे, बात चीज़ें ऊपर तक उनकी पहुँचती थी, बात नहीं पहुँचती थी, और वो ख़ुद भी मुतासर नहीं था, क्योंकि जो उसके दोस्तों ने, अरब दोस्तों ने उसको अरब लीग के अंदर वापस ले जाकर जो इत्मीनान आए थे, इसकी वजह से वो कोई रिएक्शन करने के लिए वहां पे आमादा नहीं था। तो ये तमाम तर अवामिल थे कि ये हुकूमत इतनी जल्दी के साथ जो है वो गिरा दी गई, क्योंकि शाम की आर्मी के अंदर यानी वो पहले थक तो चुकी थी 13-14 साल जंग करने के बाद। नंबर दो, जो उनके लीडर थे वो जंग करने का इरादा नहीं रखते थे और उनके ताल्लुकात कायम हो चुके थे। अब इत्तेहादी यहां कुछ नहीं कर सकते थे। इत्तेहादियों ने कोशिश की उसको हौसला देने की कि हम आपके साथ हैं, और एक इत्तेहादी उसके अंदर रशिया था, जो खुद अमेरिकन के साथ शायद डील कर रहा था कि आप यूक्रेन में हमें रिलीफ दें, हम आपको शाम के अंदर आपके हवाले करते हैं। तो रशिया के ऊपर सीरिया का ज़्यादा जो है वो यानी इर्तिकाज था, और उसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार होता गया, और सीरिया के लोग जो है वो ज़िमनी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस तरफ चले गए, रशिया की तरफ, कि रशिया हमारे हमारे लिए ज़्यादा अजीज है। और रशिया अपनी सियासत और अपने इक्तदार को बचाने के लिए और यूक्रेन के अंदर अपने लिए सहूलत देने के लिए रशिया की ये कोशिश थी, और अब वो मज़ीद क्योंकि वहाँ भी उलझ चुका था, उसके पास भी इतनी हिम्मत और सिकत नहीं थी कि वो यहाँ पर लड़ सके, तो वो भी खुद ब खुद यहाँ से वो कुछ ना कुछ हासिल करके पीछे कदम रखना चाहता था। अब ये सूरत हाल बायस बनी कि जब हलब पर हमला हुआ और जब वो यानी ये बड़ी तादाद के अंदर 40-50 हज़ार बंदे हमला आवर हुए, उनके पास बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स थे उनके, और बड़े जंगजू और कमांडोज और जो क्या कहते हैं छापा मार कार्रवाइयाँ करने वाले जंगजू इस फौज के अंदर मौजूद थे। जब उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की तो शाम की फोर्सेस ने असलाह समेत हर चीज़ छोड़कर ये पसफाई इख्तियार कर ली। इब्तदाई तौर पर अस्करी माहरीन ये कहते हैं कि जब उन्होंने हमला किया इदलिब की तरफ से, उनके ज़हन में ये था कि हम थोड़ा अपना दायरा वसी करेंगे, यानी वो हलब पे कब्ज़े करने की उनको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हम आइंदा अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इतनी बड़ी ज़मीन पे हमारा कब्ज़ा होगा, हम इतनी शरायत ज़्यादा मनवाएंगे। वो तो इस लिहाज से उन्होंने हमला किया था, उनको भी शायद इतनी तवक्को नहीं थी, लेकिन उनकी तवक्को से ज़्यादा मद्दे मुकाबल जो है वो हौसला हार चुका था। तो जब ये हमला शुरू हुआ तो हलब के जो फौजी कमांड जो सीरियन आर्मी के लोग थे उन्होंने बग़ैर किसी जंग के बग़ैर किसी मुकाबले के हलब उनके हवाले कर दिया। फकत हलब जंग नहीं की बल्कि जितना असला इनका वहाँ पे था जिनके इनके जहाज खड़े थे जिनके एयरपोर्ट्स के ऊपर तमाम तर चीज़ें छोड़कर ये पीछे हटाए। उसके बाद ये आकर रुके हमा के ऊपर और वो बग़ैर किसी रुकावट के हमा पर आ गए। हमा के अंदर बाद फौजी ऑफिसर ने मुकाबला किया जो वहाँ पे थोड़ी बहुत जंग हुई, लेकिन ऊपर से आर्डर आ गया कि हमा शहर को छोड़ दिया जाए। कहा गया कि ये 10 मिनट के लिए जो है वहाँ पे जो उनका वॉकी टॉकी या उनका मुवासलात का निज़ाम है वो हैक हो गया, ये खबरें चली, और जिसके अंदर उनके जो कमांडर था आर्मी का उसकी तरफ से आर्डर आया कि आप शहर को छोड़ दें। अब ये यानी हैक हुई थी या उसने खुद आर्डर दिया था, खुलासा नतीजा एक ही था कि हमा शहर से भी निकल आए। अब उसके बाद आखिरी जबा इनके वो रह जाता था दमिश्क से पहले वो होम्स का था, और होम्स के जबा दुश्मन भी डरता था क्योंकि यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर मुकावमत के लोग भी मौजूद थे और आर्मी भी अब सारी जो हलब वाली थी हमा वाली थी वो सारी की सारी यहाँ आ चुकी थी और यहाँ बहुत बड़ी फोर्सेज थी। अगर इरादा होता तो ये जंग बहुत बड़ी लड़ी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि ऊपर सारी डील हो चुकी थी सारा मुआहदा हो चुका था जिसकी वजह से अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जंग नहीं करेंगे। तो हमस के अंदर बगैर गोली चलाए वो लोग जो है वो दाखिल हो गए और इसी अंदर वो दमिश्क के अंदर भी दाखिल हो गए, कोई मुकाबला नहीं हुआ। वगरना अगर कुदरत और ताकत को देखा जाए तो हम्स मुहसन था हर लिहाज से, हम्स के अतराफ में मुकावमत के मोर्चे मजबूत थे, सूरत हाल बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि इरादा नहीं था लीडरशिप का जंग करने का। अब जब असल जो अहले मुल्क लोग थे जब जो शाम की आर्मी थी अगर वो नहीं लड़ना चाहती थी तो उसके इत्तेहादी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। शायद दुश्मन का यह भी नक्शा था, वो चाहते थे कि सीरियन आर्मी पीछे हट जाए और जो इनके इत्तेहादी हैं वो हिजबुल्लाह के लोग हों, वो ज़ैनबियून फातिमियून या सिपाह ईरान के लोग हों, वो चाहते थे कि इनके दरमियान और इन तुर्की से आने वाले और इदलिब से आने वाले जो लोग हैं इनके माबैन ये जंग हो। वो एक बड़ी साजिश रखते थे इस लिहाज से, लेकिन मुकावमत की लीडरशिप ने जब देखा कि इनके पास इरादे नहीं हैं तो उन्होंने फिर यही खबरें हैं कि उन्होंने फिर ऊपर जो बड़े लोग थे जो इनके इज्तिमात कतर में हुए या मुख्तलिफ जगहों पे हुए वहाँ पे ये तय हो गया कि अगर ये खुद अगर वो नहीं लड़ेंगे तो हमारा लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने लोगों की जान बचाने के लिए और वहाँ पर जो अलवी और जो शिया मौजूद हैं वहाँ पर उनकी जान की हिफाजत के लिए और मुकद्दसात इस्लामिया हरम हज़रत ज़ैनब कुबरा हज़रत रुकैया और बाकी हरमों की हिफाजत के लिए उन्होंने उनके से कहा कि अगर आप इनको कुछ नहीं कहते तो हम जब ये खुद नहीं लड़ रहे तो हम भी इस जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो इन शरायत के ऊपर ये बकायदा पूरा का पूरा दमिश्क चला गया और शाम के सदर ने वहाँ पर ख़ुद उसका वो क्लिप चल चुका है जिसके अंदर उसने बताया है कि मैंने जो क्या नाम है रशिया के साथ या ईरान के साथ जो अस्करी मुआहदे हैं उनको ख़त्म करने का اعلان کرتا ہوں، اور یعنی اور دوسری طرف اس نے اپنے تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کے سربراہ کے حوالے کیے اور کہا کہ ایک سال کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور خود مستعفی ہو کر وہ وہاں سے ایک جہاز کے ذریعے فرار ہو گیا، ملک سے باہر چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس جب خود ارادہ نہیں تھا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تو یہ قطن ایسا نہ ہوتا اگر وہاں پہ یعنی وہ جنگ جب سیریا بالکل بے بس تھا، کوئی قدرت نہیں تھی، اور اتنا بڑا حملہ تھا، یہ تو حملہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، جو حملہ 2011-12 سے شروع ہوا تھا وہ بہت بڑا حملہ تھا اس کے مقابلے میں، لیکن وہاں پہ اگر وہاں پہ سیرین آرمی ٹھہر سکتی تھی اور اس کے اتحادی اس کو بچا سکتے تھے، آج بھی بچا سکتے تھے، لیکن آج یہ اس کو گرنے کا سبب خود یعنی آرمی کے افسران کا یا نظام کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، یہ ان کی کمزوری تھی، یا ان کو جو دھوکہ دیا گیا ان کے عرب دوستوں نے، جن نے عرب لیگ کے اندر ان کو جگہ دی تھی اور اطمینان دلوایا تھا کہ ہم آپ کو بچائیں گے، وہ عین وقت پہ وہ مکر گئے، انہوں نے اس کو بالکل نہیں بچایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس دھوکے کی شکل میں شام کا یعنی ایک جبہ جو ہے چلا گیا۔ اب اس کے بعد اگلا سوال شروع ہوتا ہے کہ شام کے جانے کے بعد آیا مقاومت کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، یا اب رہے گی باقی حزب اللہ یا نہیں رہے گی؟ اب یہ ایک سوال عموماً لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مقاومت نے جب حزب اللہ کے اندر کام شروع کیا تھا تو اس وقت اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، ایران کے اور شام کے تعلقات ضرور اچھے تھے، لیکن لبنانی مقاومت کے، کیونکہ وہاں پہ جب سیرین آرمی موجود تھی تو اس کے تعلقات جو زیادہ تر تھے وہ عمل کے ساتھ تھے یا باقی جو اس کے اتحادی تھے ان کے ساتھ تھے، تو لبنان کی مقاومت اس نے صفر سے کام شروع کیا تھا، بہت کمزور تھی، اس کمزوری سے اٹھتے ہوئے آج ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکی ہے، اور ایک ایسی طاقت بن چکی ہے جو دنیا کی مقاومت کے لیے ایک وہ نمونہ بن چکی ہے۔ اس لیے حزب اللہ کا ایک رستہ سپلائی لائن آپ کہہ سکتے ہیں وہ بند ہوئی ہے، اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ حزب اللہ کے پاس متعدد آپشن نہیں ہوں گے یا حزب اللہ خود کفیل نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ مقاومت جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے وہ لوگوں کے تصور سے بھی بڑی ہے، اور اسرائیل تو اس کا اعتراف کر چکا ہے کہ اسرائیل نے اپنے 5 ڈویژن کے ساتھ 64 روز بھرپور حملہ کیا تھا، ان کے طیاروں نے آ کر جنوب کے اوپر ابھی گزشتہ چند مہینوں کے اندر، پہلے وہ آ کر بمبارمنٹ کرتے تھے، مکمل علاقے کو تہ نہس کرتے تھے، تباہ کر دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے ٹینک آتے تھے جو تباہی کرتے تھے، اور ان کی پھر فوج آتی تھی کہ جو پیش قدمی کرتی تھی، لیکن 64 دن کے اندر انہوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو حزب اللہ نے اپنی طاقت کا بتایا کہ ہمارا اگر قائد شہید بھی ہو گیا ہے، ہماری لیڈرشپ چلی بھی گئی ہے، ہم کمزور نہیں ہوئے بلکہ ہم مزید طاقتور ہیں۔ تو حزب اللہ نے تو اپنی طاقت بتا دی ہے، اب کسی کو زیادہ فکر مند ہونے کی اس معاملے میں ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درست ہے کہ اگر آپ کے بارڈر کے اوپر آپ کا کوئی اتحادی ملک ہو تو اس سے آپ کو تقویت ملتی ہے، لیکن یہ عنصر یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو بارڈر کوئی اتحادی نہ ملے تو مقاومت جنم نہیں لے سکتی یا طاقت نہیں پکڑ سکتی۔ ہمارے سامنے انصار اللہ کی مثال ہے، انصار اللہ کے بارڈر کے اوپر کوئی بھی اتحادی ملک نہیں ہے، اور نہ ہی کیا نام ہے وہاں پہ ملک کے اندر ان کی کوئی حکومت تھی یا ان کی قدرت طاقت تھی، بلکہ وہ تو خطے کے تمام تر ممالک کی اماجگاہ تھی، مراکز تھے، وہاں پہ برطانیہ کا نفوذ تھا، وہاں پہ امریکن کا نفوذ تھا، وہاں پہ اخوانیوں کا نفوذ تھا، سعودیہ کی طرف سے ایک اتحاد بنایا گیا 40 ممالک کا، اور اس کے اندر قطر داخل، امارات داخل ہوا پوری جنگ کے اندر، اور بھی سارے ممالک داخل ہوئے، ایک لمبی جنگ مسلط کی گئی، لیکن مقاومت نے وہاں پہ نہ ختم ہوئی بلکہ جنم نہیں فقط لیا بلکہ طاقت بھی اختیار کی، اور اتنے بڑے طاقتور بنے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اسرائیلی بحری جہازوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، امریکن جہازوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے برطانیہ کے جہازوں کے اوپر حملہ کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ اس اقوام متحدہ کا فیصلہ کی طرف سے قرارداد پاس کروا کے برطانیہ اور امریکہ نے حملہ کیا یمن کے اوپر، لیکن یمن کا کچھ نہیں कर सके। तो वहाँ पर जैसे मुकावमत ने अपने आप को मजबूत किया है, तो दुनिया के किसी खत्ते में मुकावमत अपने आप को मजबूत कर सकती है। और लबनान की मुकावमत तो वो मुकावमत है जिसने यमन की मुकावमत को ये मुकावमत बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। फिर ये मुकावमत फकत यमन तक या लबनान तक महदूद नहीं या फलस्तीन तक महदूद नहीं, इराक के अंदर भी मौजूद है और बड़ी ताकत के साथ मौजूद है। ये दाइश के आने से पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन यही मुकावमत थी जिसकी प्लानिंग के साथ आज कासिम सलमानी और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की प्लानिंग के साथ, उनकी मदद के साथ, उनकी मेहनत के साथ आप देखा कि हशदुशाबी जैसी एक बहुत बड़ी कुव्वत इराक़ के अंदर उभरती है और जो अमरीका के ऊपर डायरेक्ट हमला आवर भी होती है, मुल्क को दाइश से आज़ाद भी करवाती है, दाइश को ख़त्म भी कर देती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हशद पूरी ताकत के साथ वहां पे मौजूद है। तो मुकावमत इसके अलावा भी उसकी फिक्र और सोच दुनिया के अंदर बहुत दूर तक जाग रहे पहुंच चुकी है। तो अब ये मुकावमत खत्म होने वाली नहीं है। एक जमाना था कि मुकावमत नामी चीज नहीं होती थी, लेकिन आज गुज़िश्ता 40 साल से अगर देखें तो हर रोज़ मुकावमत आगे बढ़ी है और इस कत्ल वारत से, इस प्रेशर से, इस दबाव से कभी मुकावमतें ख़त्म नहीं होती, बल्कि वसत और ताकत इख्तियार करते हैं, उनके हौसलों में इजाफा होता है, जिसकी तरफ राबर मुअज़्ज़म ने अपने आखिरी खिताब के अंदर यानी बिल्कुल वजाहत के साथ इस चीज़ को बयान भी किया है और ये उम्मीद भी दिलाई है। और शाम के अंदर भी उन्होंने कहा है कि उम्मीद अब शाम के गयूर जवानों के ऊपर है कि वो किस अंदाज से जो है इस मुल्क को इस इसराइली छावनी से निकालते हैं, इसराइली तसल्लुत से निकालते हैं। और ये इसराइल के इत्तेहादी जो इस वक्त दमिश्क पे गालिब आए हैं, आपने देखा कि उसके बाद वो मुल्क इसराइल के लिए मुकम्मल मुबाह हो चुका है। इसराइल ने उस मुल्क को मफलूज कर दिया है, उसकी पूरी अस्करी कुव्वत और ताकत जो थी, यानी हदफ फकत बशार को हटाना नहीं था बल्कि एक मजबूत अरब मुल्क को मुकम्मल तौर पर मफलूज करना और तबाह करना था, जिसकी वादे मिसाल ये है कि इसराइल ने फौरन बशार अल असद के जाने के बाद क्या किया कि जितनी भी उनकी फिजाइया थी और उनके फिजाइया के डिपू थे, उनके अड्डे थे, उनके जहाज थे, सारे के सारे तबाह कर दिए। फिर बहरिया की तरफ जाते हुए उनके जो जंगी अस्तूल थे, जो उनके जंगी बहरी बेड़े थे, वो तमाम के तमाम और उनकी बंदरगाहें तबाह कर दी। इसके अलावा उनके रिसर्च और तहकीकात के मराकज जो मौजूद थे और आईटी के मराकज मौजूद थे, वो सारे के सारे तबाह कर दिए। उसके बाद उनके साइंसदान और जो उनकी अहम शख्सियात थी, यानी जो उनके मुल्क का सरमाया होती हैं, उनको वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। तो इस अरसे के अंदर इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए इसराइल जो कुछ कर सकता था वो कर रहा है। और वहाँ पे ये लोग जो अपने आप को मुजाहिद इस्लाम कहते हैं, ये पूरे सहूलतकार हैं और ये पूरा हर लिहाज से वो ताउन कर, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि अब शाम तकसीम हो जाए। अब इसराइल कहता है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम कुर्द इलाकों तक पहुँचेंगे, शाम के तेल और गैस के ज़खायर तक पहुँचेंगे, हम दरा पर कब्ज़ा करेंगे, हम सवेदा पर कब्ज़ा करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरी अरब लीग, पूरी मुस्लिम उम्मा सब खामोश है, कोई बयानात भी आप नहीं सुनते, कहीं से मुजम्मत भी नहीं सुनते। तो ये उम्मत बिल्कुल बेहिस हो चुकी है। इस वक्त अगर कोई उम्मीद है तो वो उम्मत मुस्लिमा की नौजवान नस्ल से है कि वो उठे कि अज़र नौ अपनी उम्मत की इज्जत और करामत और शरफ के लिए क़याम करे और इसराइल को इस तमाम तर तजावज़ जो कर रही है या इसके ख़ात्मे के लिए वो मुकावमत का साथ दें।